मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 13 मार्च 2020 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों फिलहाल हम लोग विदुर नीति पर बात कर रहे हैं और विदुर नीति के जो दो हिस्से थे जिस श्लोक पर हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं उस पर हम लोगों ने काफी विस्तार से बातें की हैं, जिसमें पहला हिस्सा था कि कोई भी अक्षर व्यर्थ नहीं होता, उसमें मंत्र की शक्ति होती है। ठीक इसी तरीके से कोई भी प्लांट वनस्पति बेकार नहीं होती, उसमें औषधि का गुण होता है। और अब हम आ रहे हैं तीसरे भाग पर जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसका कोई उपयोग ना हो। और ये जो पूरा का पूरा जो इनका श्लोक है उसे मैं एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूं। श्लोक है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तय दुर्लभ। ये जो चौथा भाग है इसका वो है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वह है इनका उपयोग करने वाला होना चाहिए। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं अयोग्य पुरुषो नास्ति। देखिए कहने का मतलब क्या है। पहली बात तो यह है, मुझे लगता है कि शायद आपके दिमाग में यह तथ्य अच्छी तरह से बैठ गया होगा और बैठ ही जाना चाहिए कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, चाहे वो वस्तु हो, जीवित हो, अब मृत हो, जड़ हो, जो भी हो, जिसका कोई ना कोई उपयोग ना होता हो। देखिए जब हम उपयोग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि उसकी जो यूटिलिटी है वो सकारात्मक होनी चाहिए। नहीं, योग्यता या उपयोगिता का मतलब केवल इस बात से होता है कि वो व्यर्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी पर भूकंप आ रहा है, पृथ्वी पर तूफान आ रहे हैं, तो हम इसे अच्छा नहीं मानते, ये बुरा है। हम बुरा क्यों है? क्योंकि वह हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन प्रकृति की डिक्शनरी में अच्छा और बुरा जैसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जब हम अयोग्यम पुरुषो और वनस्पति औषध और अक्षरम मंत्रम की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा इससे ऊपर उठना होगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ उपयोग है, जिसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दुरुपयोग है, लेकिन वह भी प्रकृति का एक उपयोग है, है ना। ये जो वर्गीकरण किया है अच्छा बुरा उपयोगी अनुपयोगी, ये हमने किया है। प्रकृति की जो सोच है वो बहुत विशाल सोच है। इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई रोल है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उपयोग शब्द की जगह ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि उसकी कुछ ना कुछ भूमिका है, वो अपनी भूमिका निभाता है। और फिर जब हम प्रकृति की श्रृंखला की बात करते हैं कि इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो सब श्रृंखलाबद्ध हैं, तो फिर तो बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है और यहां बात सीधे सीधे उपयोगिता पर आ जाती है। तो देखिए कह रहे हैं कि अयोग्यम पुरुषो नास्ति। अब आप सोच करके देखिए कि जब अक्षर में मंत्र की शक्ति है, हर वनस्पति में औषधि की शक्ति है, हालांकि यहां विदुर जी उसके पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं, उपयोगिता की ही बात कर रहे हैं, तो फिर पुरुष तो इन सबसे बहुत ऊपर उठा हुआ है। ऊपर इसलिए उठा हुआ है, जब मैं पुरुष कह रहा हूं तो आप स्त्री पुरुष दोनों को ही लेकर के चलें, इसलिए ऊपर उठा हुआ है क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है, उसके पास विवेक है, उसके पास सोचने समझने की अनंत शक्ति है। सोचने समझने की शक्ति पशुओं के पास भी है, कहा जाता है वनस्पतियों के पास भी है, लेकिन उनकी यह शक्ति यह क्षमता केवल उनके अस्तित्व की रक्षा तक ही सीमित है। लेकिन व्यक्ति की जो सोचने समझने की क्षमता है वह तो अनंत है, बहुत ही विशाल है, और इसीलिए पुरुष तो इन सबसे बहुत ऊपर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वनस्पति व्यर्थ नहीं है, उसमें औषधि की शक्ति है, तो पुरुष का तो फिर कहना ही क्या है, वो तो बहुत ज्यादा योग्य है ही। अब इसमें आप देखिए कि एक बड़े मजेदार बात आपको दिखाई देगी। इन तीनों में देखिए थोड़ी सी बारीकी पर जाइए। अक्षर को कह रहे हैं मंत्र की शक्ति है, ठीक है, वनस्पति को कह रहे हैं कि औषधि की शक्ति है, लेकिन पुरुष के बारे में वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पास ये शक्ति है कि वह यह रच डालेगा, यह कर डालेगा, यह बना डालेगा, नहीं कह रहे हैं। वो केवल कह रहे हैं कि वह अयोग्य नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई योग्यता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं योग्यम पुरुषः, कुछ इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं अयोग्यम पुरुषो अयोग्य पुरुषो नास्ति, यानी कि कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि उसकी कोई ना कोई भूमिका इस धरती पर होती है। दोस्तों, एक बात जो मुझे व्यक्ति के बारे में बहुत ही अद्भुत मालूम पड़ती है वो ये है कि हम सब जो हैं इस धरती पर और जितने भी हैं और जहां जहां भी हैं, सब अपने आप में अनोखे हैं। और इसके बारे में मुझे लगता है कि आपने काफी कुछ पढ़ा भी होगा, ये बात बार बार दोहराई भी जाती है, तो मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कह रहा हूं अनुभव के स्तर पर कि सच में हर व्यक्ति किसी न किसी मामले में अद्भुत है, अनोखा है। कोई भी व्यक्ति दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं है कि बिल्कुल कोई व्यक्ति है जिसके जैसा एकदम आप भी हैं, क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति कभी डुप्लीकेट काम नहीं करती, वो हमेशा नया नया रचती है। यहां तक कि आप प्रकृति में जाकर के देखिए, अगर आपको दो पत्ते दिखाई दे रहे हैं, दो फूल दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए तो वो भी एक जैसे नहीं होते। मतलब प्रकृति की ये जो कलाकारी है ये बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही जादुई है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं है, वो अपने आप में बिल्कुल विलक्षण है, बिल्कुल अद्भुत है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है, जो भले समाज के कारण पैदा हुई हो, कि हम हर कोई एक दूसरे से अलग है, लेकिन हम दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारे आदर्श बन जाते हैं, हमें लगता है कि यार काश हम भी ऐसा बन पाते। एक अच्छी बात है कि हम कम से कम उसको अपना प्रोत्साहन मान रहे हैं, उनकी वजह से हम मोटिवेट हो रहे हैं और उनकी वजह से हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करें, वहां तक तो वो ठीक है। लेकिन जब हम एकदम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वहां हम फेल होंगे ही होंगे, क्योंकि इसी को गीता में कृष्ण ने कहा है स्वभाव स्वभाव, और स्वभाव को ही उन्होंने धर्म कहा है। कभी आप गीता ध्यान से पढ़ें तो वहां आपको धर्म की एक बहुत नई परिभाषा मिलेगी, जो सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। स्वभाव को उन्होंने धर्म कहा, अपने स्वभाव में रहना धर्म है। तो मेरा स्वभाव यानी कि मैं जो हूं, प्रकृति ने मुझे जिस तरीके से गढ़ा है, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा धर्म है। दूसरे का स्वभाव दूसरे का धर्म है, तीसरे का स्वभाव तीसरे का धर्म है। लेकिन जब मैं स्वभाव की बात कर रहा हूं तो इसमें आप गलत स्वभाव को न माने, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो देखिए समाज ने अपनी एक व्यवस्था कर रखी है, राज की अपनी एक व्यवस्था है, वो मुझे दंड देगा, तो वो तो अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि समाज में अगर दंड का विधान नहीं किया जाएगा तो ये मान लीजिए कि समाज रहेगा ही नहीं, समाज खत्म हो जाएगा। तो वो विधान है, तो वहां मुझे अपने स्वभाव को कहीं ना कहीं नियंत्रित करना पड़ता है। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में जो करना चाहता हूं, जो पाना चाहता हूं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने स्वभाव को टटोलूं कि दरअसल मेरे अंदर जो कर्म का जो बीज है वो किस तरीके का है, मैं क्या कर सकता हूं। और मैं क्या कर सकता हूं इसका अनुमान लगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को समाप्त भी करूंगा, और वो ये कि जिस काम को आप बिना थके कर सकें या करते हुए थकान महसूस न करें, करते हुए ऊब महसूस न करें, करने के लिए लगातार आप बेचैन रहें, करने में आपको मजा आए, आप समझ लीजिए कि वही चीज आपका स्वभाव है, वही कर्म आपको करना चाहिए, उसी कर्म के बीज आप में निहित हैं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, दो दिनों के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब ढेर सारी और बातें होंगी। आप सब मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।